क्या करना है, वार्तालाप करना है, पर्सनल मुलाकात करना है, क्या करना है? एक मिनट, हाँ जी,
मुझे प्रश्न है उनके पास करने के लिए।
कई प्रश्न है?
उनके पास एक ही है और आपने इन क्वेश्चन और
कुछ है प्रश्न भाई का प्रश्न है कुछ पूछिए, उनका भी एक प्रश्न है, भाई का भी एक प्रश्न है।
हाँ जी,
जस्ट वंडरिंग अबाउट बाबा हैज मेंशनड द पावर ऑफ साइलेंस एंड द पावर ऑफ साइलेंस ऑल कम टुगेदर, बाबा जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट।
बाबा वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसे मतलब बाबा ऐसे बताते हैं कि जो साइलेंस की शक्ति है और साइंस की शक्ति है वो दोनों मिल जाएंगे, तो उसके बारे में वो कुछ जानना चाहते हैं, ये कैसे
जानना चाहते हैं?
हाँ, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं।
साइंस की शक्ति जो कहते हैं, साइंस को भी मन बुद्धि एकाग्र करनी पड़ती है कि नहीं? एकाग्र करनी पड़ती है, परंतु उनका परंतु उनका एकाग्रता का प्रोसीजर बहुत लंबा है।
बट द प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लॉन्ग,
2500 साल से ये साइंस की शक्ति काम करती चली आ रही है।
इट सिंस 2500 इयर्स दैट द पावर ऑफ साइंस हैज बीन वर्किंग,
और ये साइंस की शक्ति जो 2500 साल से काम करती चली आ रही है, वो पंचभूतों को, पांच भूत, पंचभूत कहो, भौतिक शक्ति कहो, उसका विश्लेषण करती चली आई है। जो पांच भूत हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जिनसे इन शरीर की रचना होती है, वो पंचभूत जड़ हैं।
The five elements, that means the air, water, fire, earth and sky, these five elements through which the body is created, these five elements are inert.
तो पांच जड़ भूतों का बुद्धि में आलोड़न करते करते वैज्ञानिकों की बुद्धि जड़जड़ी भूत होती जाती है।
Because of continuously thinking and churning over these five elements, the intellect of the scientist it has become inert.
इतनी जड़जड़ी भूत हो जाती है कि जैसे मूर्ख व्यक्ति जिस डाली पर बैठता है उसी डाली को काटने लग पड़ता है।
And it becomes inert to so much extent that just like a foolish person, he cuts the same branch on which he sits.
क्योंकि पांच तत्वों का बुद्धि में आलोड़न करने से देह अहंकार बढ़ता चला जाता है.
Because of thinking and churning on five elements, the body consciousness it keeps on increasing.
और जिस दुनिया में रहता है उसी दुनिया का संहार करने के लिए आतुर हो जाता है.
And the person who lives in whichever world the person lives, he is very he is anxious to destroy or to slay that world itself.
और वैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी कटी है रचना इस संसार में वो एटॉमिक एनर्जी है.
एंड द बिगेस्ट रेशियो ऑफ द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड इज एटॉमिक एनर्जी.
वो एटॉमिक एनर्जी संसार के ध्वंस का काम करती है, विनाश का कार्य करती है, निर्माण का कार्य कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती.
एंड दैट एटॉमिक एनर्जी इट डज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन नॉट द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन.
और करती भी है जो नाम मात्र, सिर्फ कहने मात्र के लिए थोड़ा.
एंड इफ इट ऑल इट डज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन देन इट डज फॉर अ सिंगल ट्रेस इट्स लाइक जस्ट फॉर द मेन सेक इट डज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन.
उसमें संसार का इतना वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी जाता है कि उसके उसकी अंश मात्र राशि से सारी दुनिया बड़ी सुख से जिंदगी जी सकती है. इतना वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी चला जाता है.
Robert saying that it requires the wastage of time, money and energy to so much extent that even if by a single amount of that, the amount that is spent on the construction of atomic energy, if even a single amount is used, then the entire world can live very happily. So it's a small amount of that money.
इस ध्वंसात्मक शक्ति की माँ है महाकाली.
एंड द मदर ऑफ दिस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज महाकाली.
और उसका कंट्रोलर है महाकाल.
एंड द कंट्रोलर इज महाकाल.
हर हर बम बम महादेव. वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है, जब सारी सृष्टि के ऊपर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ ये डिस्ट्रक्टिव सामान इतना खतरा पैदा कर देता है कि सारी दुनिया को कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने का, इससे उबरने का, तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और इस सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है मनुष्य, उस मनुष्य के द्वारा पंच तत्वों का संघात जिसे कहते हैं महाकाली प्रकृति, प्रमाणे प्रकष्ट कृति माने रचना तैयार करता है, जिसका नाम देते हैं ब्रह्मा. प्रैक्टिकल में ब्रह्मा सारे संसार के जितने भी देह अभिमानी हैं, असुर हैं, उनका सफाया करने वाली, उनमें वैज्ञानिक भी आ जाते हैं. परंतु वो वैज्ञानिक तब झुकते हैं मारे देह अहंकार के, जब बिल्कुल अपने सर के ऊपर आना मुसीबत आ गिरती है।
At the time when the scientists and all, the creators of the atomic energy, when they create the materials of destruction to so much extent that the people, they don't find any path in order to save their lives, that they are so deep that at that time the Supreme Father, Supreme Soul comes, and it is through the seed form of soul that he creates Prakriti, or that means nature, and that nature is actually the combination of five elements, and that Prakriti or nature is named as Brahma in practical. And that Brahma or that Prakriti, she is the one who slays or who clears all the demons. And those demons which are very body conscious. And so among those demons and all body conscious people, even the scientists are included among them. And the scientists have so much of body consciousness in them that they don't bow down before प्रकृति।
अंत में जब वो देह अभिमानी साइंटिस्ट घबराहट में आकर के सरेंडर कर देते हैं और आत्मिक नॉलेज, जिसे आध्यात्म नॉलेज कहा जाता है, आध्यात्म अधिमानी अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर की नॉलेज लेने के लिए विवश होकर के उस नॉलेज को ग्रहण करना शुरू करते हैं।
At the end when scientists they get terrified, at that time they are compelled to accept the knowledge, and they are compelled to accept the adhyatmic knowledge. Adhyatma, that means atma, that means soul, and adhyatmic means the knowledge that is in the soul. The knowledge of the soul. That is known as
death. Is that the part when they become equal? When they accept the atomic energy?
तो वो बोल रहे हैं क्या वो समय तब है जब जो साइलेंस की शक्ति और जो साइंस की शक्ति है वो एक हो जाएगी, क्या वो तब वो समय होगा जब वो स्वीकारेंगे अध्यात्मिक नॉलेज को, अध्यात्मिक ज्ञान को?
स्वीकारेंगे बाद में, पहले समझेंगे के भौतिकवाद अलग चीज है और आध्यात्मवाद अलग चीज है, ये एक नहीं है, ये सिर्फ देह नहीं है, ये पंचभूत नहीं है, पंचभूतों का समुदाय नहीं है ये हम, बल्कि पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, उस शरीर के साथ इसमें आत्मा भी जुड़ी हुई है, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है। पंचभूत अलग चीज, इस दुनिया की चीज, आत्मा उस दुनिया की चीज जिसे सोल वर्ल्ड कहा जाता है, सुप्रीम एबोर्ड में रहने वाली, जहां सुप्रीम सोल रहता है। वो आत्मलोक और ये पंचभूतों का लोक, ये जड़त्वमयी दुनिया और वो चैतन्य आत्माओं की दुनिया, दोनों का जब मेल होता है, पुरुष और प्रकृति की दुनिया, तब जीवात्माएं अपना पार्ट बजाती हैं इस रंगमंच पर। ये बात उन वैज्ञानिकों को स्वीकार करनी पड़े कि आत्मिक शक्ति ही ज्यादा पावरफुल है, पांच भूतों की शक्ति, पंच भूत की शक्ति जिनका हम आलोड़न कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, वो शक्ति ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो वाइब्रेशन को बनाने वाली शक्ति है आत्मा, मन बुद्धि, ये पांच तत्वों का शरीर ये वाइब्रेशन नहीं बनाता है, वाइब्रेशन की शक्ति से ही सारी दुनिया में आवाज फैलेगी, सारी दुनिया आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी वाचा का ज्ञान 80 साल हो गए लेते लेते, भाग दौड़ का ज्ञान, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ करते करते 80 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दृष्टि का लेन देन भी कितने साल होते गुजर गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंद्रियों की शक्ति से परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा जब एकाग्र होगी तो वाइब्रेशन की शक्ति से सारी दुनिया चेंज होगी। वाइब्रेशन की शक्ति से राधा कृष्ण जैसे बच्चे भी देवात्मा में पैदा होंगे। वो वाइब्रेशन की शक्ति से दुनिया उड़ती हुई पैदा होगी, उड़ती कला वाली। उसके बाद जो राधा कृष्ण की सृष्टि आएगी या त्रेता में क्षत्रियों की पैदाइश की प्रक्रिया होगी, वो सब उतरती कला उतरती कला उतरती कला। तो वो वाइब्रेशन की शक्ति हम आत्मिक स्थिति को आत्मा को पहचान करके ही कर सकते हैं। अभी जो बात चल रही है वो पूरी नहीं हुई। वैज्ञानिक लोग हैं, देह अहंकार में आकर के अपनी कमजोरी को नहीं देखना चाहते। वो जानते हैं कि बर्मूला ट्रायंगल कोई बड़ी शक्तिशाली आत्माओं के द्वारा चलाई हुई शक्ति है।
They know that the Bermuda Triangle, it is the power which is actually accelerated by a powerful source.
वो जानते हैं कि भारतवर्ष में कई एक अजूबे गरूबे ऐसी चीजें हैं भक्ति मार्ग में जिनका वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है।
So they know that in India there are several antique or there are several such kind of things which scientists have no answer to those things. That why are they so?
जैसे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी एरोप्लेन नहीं उड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन विल नेवर फ्लाई ओवर जगन्नाथ टेम्पल।
जगन्नाथ के ऊपर कोई भी चिड़िया भी नहीं उड़ती है।
बाबा वो पूछ रहे थे ऐसा क्यों है, आप तो एरोप्लेन का बताए उसके लिए वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है।
ज्ञान में एरोप्लेन किसे कहा जाता है?
बाबा जो आस्किंग दैट इज कॉल्ड एरोप्लेन इन नॉलेज।
What is the Viman? Vimana. Huh?
Viman. वो बोल रहे विमान
ज्ञान में बेहद में
इन अनलिमिटेड वर्ल्ड
इन आवर अनलिमिटेड वर्ल्ड व्हाट इज कॉल्ड एरोप्लेन
इंटेलेक्ट
बुद्धि
आत्मा
सोल
आत्मा रूपी एरोप्लेन मन बुद्धि रूपी एरोप्लेन। तो जितने भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर मनुष्य आत्मा है उनमें कोई ऐसी आत्मा है जो सबसे ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंची स्टेज में जाता है, जिसकी यादगार इंडिया में कैलाश पर्वत दिखाया जाता है।
Baba's questioning that among all the souls that are there in this world, is there such a soul who fly the highest and who attains the highest stage? And even his memorial is shown in India in Kailash. Kailash, that is the high, very high mountain.
Kailash.
Yes.
कौन सी आत्मा है? कौन सा aeroplane है?
Which aeroplane is that?
That's the Prajapita.
Prajapita.
Shankar.
Shankar.
Shankar. That is called Jagannath. उससे ऊंचा कोई एरोप्लेन नहीं उड़ सकता।
No aeroplane can fly higher than him.
This is reality. And nobody can cross this reality. कोई पक्षी नहीं उड़ सकता उसके ऊपर से।
बर्ड कैन फ्लाई ओवर दैट ओवर जगन्नाथ टेम्पल।
बर्मूला ट्रायंगल को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं वैज्ञानिक लोग? वहाँ उसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ा के क्यों नहीं ले जाते? बर्मूला ट्रायंगल्स के बीच में से क्यों नहीं सबमरीन ले जाते हैं?
Why don't we take the submarine in between Bermuda Triangle? From between Bermuda Triangle.
पानी का जहाज उसके बीच में से क्यों नहीं ले जाते?
Why we don't take the ship in between or from between Bermuda Triangle?
क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं?
Why are they avoiding that?
The ships mysteriously disappear.
क्योंकि जो जहाज है पानी के वो हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से गायब हो जाते हैं।
वैज्ञानिक लोग उस शक्ति को अपने से ऊंचा मानते हैं तब तो नहीं उसका आविष्कार वो क्या नाम उसके पीछे पड़ रहे हैं।
So the scientists they consider that power to be greater than them, so therefore they are not after that.
So that power of the Bermuda Triangle is the power of souls.
जो बर्मुडा ट्रायंगल की जो शक्ति है क्या वो आत्माओं की शक्ति है?
हाँ, इविल सोल्स की शक्ति है।
So That's the power of evil souls.
Why is it they come together at that spot?
बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सारी जो वो आत्माएं हैं वो उसी स्पॉट पे या उसी स्थान पे जाकर एकत्रित हो जाती हैं?
एकत्रित नहीं हो जाती हैं, वहाँ उनका जो बड़े से बड़ा अड्डा है कंट्रोल करने वाली आत्माओं का, वो वहाँ से काम करता है।
So we're saying that it's not that they gather there, but they have a gang there. They have a gang of the souls there, and it is that gang which is controlling.
वो है हद का बरमूला ट्रायंगल।
That is the limit of Bermuda Triangle.
बेहद का बरमूला ट्रायंगल भी है हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में।
We do have an unlimited Bermuda Triangle as well in the world of
Brahmins.
Come sir. Come. Is it, did you get the answer to your question?
Yes, very good. Lots to think about.
मुझे बोली कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला तो वो बोल रहे कि हाँ बहुत अच्छा है और बहुत कुछ मुझे सोचना भी है उस बारे में।
अभी सोचना है।
When Australia emerges from the ocean, how is nature and native population recreated?
वो बोल रहे हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया सागर से निकली, समुद्र से जब वो निकली, तो कैसे वहाँ पे प्रकृति और वहाँ की जनसंख्या कैसे वहाँ उत्पन्न हुई?
जैसे अमेरिका में जनसंख्या, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जनसंख्या बढ़ गई।
As the population increased in America, so the population increased in Australia as
well.
जो जो
हाँ? बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट जनसंख्या के साथ ही निकला समुद्र से
है?
क्या जो कॉन्टिनेंट है वो जो द्वीप है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या जनसंख्या के साथ ही समुद्र से बाहर निकला?
नहीं 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 नहीं, पहले स्थान आता है उसके बाद वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। अमेरिका में पहले अमेरिका आप ऊपर आई, अमेरिका का जमीन ऊपर आई, या पहले वहाँ के रहने वाले वहाँ पहुँच गए?
Baba is saying that first the land emerges and then later on the population increases. So Baba is questioning in America also, did the land it emerge first or the population come or the people living in America came first?
पहले वहाँ इंडिया के लोग जहाजों से, छोटे छोटे नावों से, छोटी बड़ी नावों से यात्रा करते करते रास्ता भूल गए और वो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, अमेरिका में जाके बस गए। वापस जाने का उन्हें रास्ता नहीं मालूम, इसलिए वो रेड इंडियंस कहे गए।
So they started living there in America and they were called as Red Indians.
ऐसे Australia
में हुआ? Similar thing happens in Australia as well.
Far away.
Australia
तो बहुत दूर है ना? तो उसे क्या होता है?
What happens? No matter.
It's difficult journey for them, long time ago.
वो बोल रहे हैं कि इतने पुराने समय में, इतने पहले के समय में इतनी लंबी यात्रा करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना?
अच्छा, अमेरिका इंडिया के लोग अमेरिका कैसे पहुंच गए? वो ज्यादा लंबा कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लंबी?
नहीं जानते हैं।
डेविड से पूछ लो। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा दूर है या इंडिया से अमेरिका ज्यादा दूर है?
वो
बता रहे बाबा कि वो ऐसे तो अमेरिका नजदीक है, लेकिन यदि हम पैसिफिक से होके जाएंगे ना,
अमेरिका नजदीक नहीं है, पश्चिम की साइड से भी अगर जाएंगे, पश्चिम से होते हुए अरब सागर पड़ेगा, अरब सागर के बाद फिर अंध महासागर पड़ेगा, अंध महासागर के बाद फिर अमेरिका आएगा। पूरा भूमध्य सागर क्रॉस करना पड़े या तो पूरा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका चक्कर लगा करके फिर पहुंचेंगे वहां। अगर ईस्ट साइड से जाएंगे तो भी पहले हिंद महासागर से निकलेंगे बंगाल की खाड़ी से होते हुए और फिर वहां प्रशांत महासागर क्रॉस करेंगे, पूरा प्रशांत महासागर, सारा प्रशांत महासागर क्रॉस करने के बाद फिर जाएंगे अमेरिका। दोनों तरफ से दूर है।
First, you have to, if you take a journey from India, then first you have to cross the Arabian Sea from the west side. Arabian Sea, then Atlantic Ocean. And the Mahasagar, is it Atlantic?
And the Mahasagar, Atlantic Mahasagar.
Atlantic Ocean. And then you have to move across the South Africa and then finally you'll reach America. And you have to go midway through the ocean somewhere. And then he was talking, if we go from east side also, then first we have to cross the Indian Ocean, and then we have to cross the Bay of Bengal, and then we have to we'll go across the Pacific Ocean somewhere, and then we'll reach America. So it's far away from both the sides.
और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हिंद महासागर क्रॉस करो, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे।
And if you want to go to Australia from India, you just have to cross the Indian Ocean and you reach Australia.
There's records of the people of Hawaii in the living history of populating the islands in Polynesia, the islands of the Pacific. They were great ocean navigators, even though they used small canoes. They were able to go to the Pacific Ocean and colonize the small islands there. They were fantastic navigators.
The people living in Hawaii.
Hawaii
Islands.
The tribal people.
They live in Hawaii Islands.
They traveled all the way across.
Across Pacific Ocean.
Yes.
And then they live in islands somewhere.
Yes.
But then what's the connection with Australia and America?
Well, it proves that they can go that distance, so the Indians could have gone to Australia.
कुछ तो बता रहे हैं कि जो हवाई आइलैंड है, कुछ हवाई आइलैंड वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वो छोटी मोटी नाव वगैरह से कहीं जाकर के और फिर आइलैंड में वहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के नजदीक ही। इज इट क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया समवेयर आइलैंड वेदर इज आइट
टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। यस
द आइलैंड वेदर इज आइट। ओके, तो वहाँ वो बता रहे कि हवाई आइलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं।
कहाँ पर है हवाई आइलैंड?
Off the coast of America.
Okay, off coast of America. Baba, वो अमेरिका के जो वो सागर के कंठे पे वही।
South America या North America?
North coast, North America.
North America.
North America के पास हवाई आइलैंड है।
हाँ, कि वहाँ पे मतलब सागर के कंठे पे वहाँ कई हवाई आइलैंड्स है, वहाँ पे कई होगा और वहाँ से जो लोग हैं वो ट्रैवल करके मतलब छोटी मोटी नाव वगैरह लेके यात्रा करके फिर ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे रहते हैं। तो जब वो ऐसे यात्रा कर सकते तो इंडिया के लोग भी तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रहते कैन इजली गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो जब वो जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया तो फिर इंडिया के लोग भी तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं।
प्रूफ चाहिए।
बाबा माता जी बोल रहे कि लेकिन ये कब हुआ कि जो इंडिया के रहवासी थे वो इंडिया से जाने लगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ?
देखो, इंडिया में इतने साधन और इतने आविष्कार नहीं हुए हैं भौतिक दुनिया के। भौतिक आविष्कार सबसे ज्यादा विदेशियों ने किए हैं। तो जो विदेशी हैं, यूरोप वासी हैं, उन्होंने ही इंडिया का पहले पता लगाया। उन्होंने ही कोलंबस के रूप में, व्यक्ति के रूप में अमेरिका का पता लगाया। ऐसे ही वो बड़े बड़े जहाजों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए। कोई जरूर नहीं कि इंडियंस ही पहुंचे हों पहले।
Baba is saying that in India there have been least inventions. India was not that forward in doing inventions and all. It was all the other lands where the inventions like Europe and all, the people living in Europe, they started doing it and they started inventing a lot. So it was just like Columbus also, he first, Columbus invented America. And so similarly, the people living in Europe, they traveled through ships and all, and they must have reached Australia. So Baba is saying it's not that only the residents of India, they travel to Australia. It can be the residents of other lands as well.
But when?
Lekin kab?
Australia emerged 300 years ago.
ऐसा कब हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो है वो 300 साल पहले ही समुद्र से निकला।
वो तो बाबा बता रहे हैं, इसका प्रूफ बाबा के पास नहीं है अभी। हिस्ट्री के अनुसार जितने भी महाद्वीप हैं उनकी हिस्ट्री कभी पढ़ी है स्टडी काल में, तो उस हिस्ट्री के अनुसार बाबा बता रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं गए कभी। वो कौन व्यक्ति थे, कहाँ के थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया 300 साल पहले, 350 साल पहले।
But then Baba don't have any proof with him, because it was when he was studying at that time, he did some study, and so that he came to know that Australia was 300 years before. But then Baba saying that he don't have proof, and neither he know who invented it and how did it came 300 years back. So it's somewhere he studied about the while studying about the islands, he studied that.
I could do. But Vishnu, why do we change in Vishnu to sustain after destruction?
Why do Vishnu?
Sustaining after destruction, not before.
अच्छा, वो बोल रहे विष्णु जो है वो विनाश के बाद पालना क्यों करता है? विष्णु जो है वो विनाश के बाद पालना क्यों करता है, विनाश के पहले पालना क्यों नहीं करता?
विष्णु का हुजूम, विष्णु का संगठन कितना बड़ा है?
नहीं,
जो पांच पांडव हैं वो तो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, वो कमजोर आत्माएं हैं एक दूसरे से। पांच पांडवों में जो युधिष्ठिर है, युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहने वाला है, वो ही सूर्यवंशी है, बाकी स्थिर नहीं रहते हैं। और पांडव तो जो एक स्थिर रहने वाला है आदि से अंत तक, उसके साथ ही कितने हैं जो इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहते हैं युद्ध में, शरीर नहीं छोड़ते।
So Baba is saying that you are talking about, because you replied that five souls. So Baba is saying that the five Pandavas, they are the ones who belong to different religions. They are not the ones who belong to the same religion. So among all the five Pandavas, the first one, that is Yudhishthir, he is the one who is actual Suryavanshi, and he is the one who, that means, belongs to the Sun dynasty, and he is the one who remains stable or remains constant in the war. So Baba is saying that how many are the companions or the supporters of Yudhishthir who don't leave the war and they remain stable in the war? How many are the supporters or companions of Yudhishthir?
Four.
वो जो उसके चार भाई जो और हैं वो
भीम है उससे छोटा, शंकर कहो, भीम कहो, भयंकर कहो, बहुत खाने वाला कहो, ब्रकोदर कहो, कोई रोटी की भूख की बात नहीं है, भोग भोगने की बात है। योग रूपी अनाज ज्यादा खाता था।
Or you may call him as Brakodar. Brakodar, that means the one who eats a lot. So Baba is saying that it's not that he eats more brains and all, but then it's about the remembrance. He remains in a lot of remembrance, and that is the brain form of remembrance. That's why Baba is
talking. Bhim itna powerful tha, ki usne akele hi 100 korvon ko mara hai. भीम ने अकेले ही 100 कौरवों को मारा है, भीम ने ढेर सारे राक्षसों को मारा, भीम ने अकेले ही ढेर सारे कीचकों को पकड़ा और मार डाला।
Baba is saying that Vini was the one who alone who killed 100 dirty brutes, who killed several of dirty brutes and demons, and killed them. He alone was the one.
भीम कर्मा कहा जाता है, भयंकर कर्म करने वाला.
He's called भीम कर्मा or the one who does great deeds.
Cruel. Cruelty का बाप.
He's the father of cruelty.
मनुष्यों में जो सबसे जास्ती बुद्धिमान हुआ मनुष्यों के बीच में, उसका नाम दिया है अर्जुन.
The one who is most intelligent among the human beings, he is named as Arjun.
जो अपने भाग्य का अर्जुन करता है बुद्धि के द्वारा. आज दुनिया में सबसे जास्ती हेल्दी कौन से धर्म के लोग देखे जाते हैं?
First, Baba said that Arjun is the one who accepts or who takes his fortune through the intellect, who is a fortunate one. And so Baba is saying that in today's world, who are the people who are more intelligent, the brains, they are more intelligent. Baba's question is, you have to give an answer.
कौन से धर्म के followers हैं जो बहुत healthy देखे जाते हैं?
Baba is questioning, he is saying that yes, who are more healthy.
कौन से धर्म के लोग हैं?
The people of which religion are the ones who are seen to be more healthy.
Healthy?
Healthy, yes.
You mean body?
Yes. वो नहीं जानते हैं.
Body?
It's the bodies.
Body, healthy.
सबसे ज्यादा purity किस में है?
The last ones.
वो बोल रहे सिख धर्म वाले नहीं.
सिख धर्म एक पत्नी के ऊपर विश्वास रखते हैं.
The people of Sikh religion they believe in one wife.
हाँ, लेकिन जो असली बौद्धि हैं, सन्यासी हैं, वो पवित्रता के ऊपर विशेष विश्वास रखते हैं. सन्यास धर्म बाद में निकला है, सन्यास धर्म भी वास्तव में निकला है बौद्धियों से.
The bodhis, who are actual sannyasis, they are the ones who believe more in purity. And the sannyas term or the sannyas religion, it originated later on by bodhis, who are the first ones who were actual sannyasis. They gave regard to purity.
So they
are the healthy.
Haan ji, hai bahut healthy hai.
Therefore they are so healthy.
Haan.
Baba.
और नकुल और सहदेव तो दूसरी माँ के बच्चे हैं.
And Nakul and Sahadev are the ones who belong to the other second mother. Second mother of Pandu.
Madri. मंद बुद्धि वाली.
She was not intellectually sharp enough.
सन्यासी. नकुल न पक्के भारतीय है न पक्के विदेशी. पक्के भारतीय भी बनने की कोशिश करते और पक्का विदेशी भी बन जाते हैं. हवाई जहाजों में सन्यासी को घूमते फिरते हैं विदेशों में.
So Nakul or they are the people who belong to sannyas religion. Sannyasis are also called Nakul. They are the ones who are not from they are not from Bharatvasis, that means the residents of India, and they are not from foreigners as well. Because sometimes they become from Bharatvasis and sometimes they become foreigners also, and they keep on roaming about the wandering in place, aeroplanes and all.
And last Pandav, Sahadev.
The last Pandav is Sahadev.
Devatam ka sahyogi. तो ये तो एक दूसरे से कम ताकत वाले हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, भारतीय धर्म हैं. पांडव पांचों ही भारतीय धर्म वाले हैं, विदेशी धर्म वाले नहीं हैं.
So these five Pandavas, they are the ones who belong to the Indian religion. and to the Indian land, and they are the ones with lesser power. And means there are four Pandavas, five, first one is the firm and the fourth are with lesser power.
इसलिए विष्णु के सहयोगी हैं, जब राजधानी तैयार होती है छोटी सी छोटी, तो अष्टदेव हैं जो पक्के सूर्यवंशी हैं। तो उनका तो हुजूम, उनका जो संगठन है वो तो आठ का ही है। कहाँ आठ की राजधानी, या कहाँ दुनिया में 500-700 करोड़, कैसे वाइब्रेशन फैलाएंगे दुनिया में?
On one hand there is the capital of eight, and on the other hand we have the world of 5 to 7 billion. So how the capital of eight will spread the vibrations in the entire world?
इसलिए विनाश होना पहले जरूरी है।
बाबा बीच में बोले थे, आप पूछे थे ना कि कैसे वो पावर अपना फैलाएंगे वाइब्रेशन, आप प्रश्न पूछे थे ना कैसे वो वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो मतलब ये उत्तर दिए पावर के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो वाइब्रेशन।
कौन फैलाएंगे? कौन फैलाएंगे?
जो आठ है वो इस सारी दुनिया में अपनी शक्ति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे।
संघ शक्ति कलो योगे, संगठन में शक्ति होती है, यूनिटी में शक्ति होती है, यूनिटी प्योरिटी से बनती है। पांच आत्माओं की प्योरिटी, आठ आत्माओं की प्योरिटी काम नहीं करेगी 500 करोड़ के बीच में।
बाबा सेइंग दैट दैट इट दैट इन द प्रेजेंट इन द आयरन एज इट्स द पावर ऑफ द यूनिटी दैट वर्क्स एंड यूनिटी इज क्रिएटेड थ्रू प्योरिटी। So the unity of eight will not work in the world of 5 to 7 billion souls.
वाइब्रेशन टूटता रहेगा
एंड वाइब्रेशन विल कीप ऑन कोलैप्सिंग।
इसलिए विष्णु का जो भी कार्य है वो गुप्त चलता है, गुप्त राजधानी स्थापन होती रहती है। नरक की दुनिया में स्वर्ग गुप्त स्थापन होता है।
And the work of establishing the heaven in the world of hell, it keeps on taking place in the incognito form.
इसलिए पहले विनाश होना जरूरी है, इतने बड़ी विशाल हुजूम का, पतित दुनिया का, पतित दृष्टियों का, पतित व्यक्तियों का, जो पतन की वाइब्रेशन है उनका समूल नाश हो जाए, फिर विष्णु की स्थापना साबित हो। और विष्णु की स्थापना भी, उनका संगठन परिपूर्ण होना चाहिए। आठ का संगठन जो है परिपूर्ण नहीं है राजधानी, परिपूर्ण राजधानी में पूरी प्रजा भी होनी चाहिए। कितनी?
Then only they are able to, their work, vibration will work in the 5 to 7 billion souls. First destruction is required, the destruction of the simple world, destruction of the vision, and destruction of simple people. Only after the complete destruction of the entire simple world takes place, after that the establishment of vision will be possible. And so Baba was, Baba says that till now the capital of vision, it isn't complete.
आप लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछे थे? अपने टैप रिकॉर्डर में देखो। हाँ, किसी को याद है? हाँ,
आठ का कितना जनसंख्या
है? आठ का
कितना प्रजा है?
आठ माने आठ, आठ ही प्रजा है।
कितना प्रजा?
हाँ, आठ में कंप्लीट प्रजा नहीं है, प्रजा होनी चाहिए 4.5 लाख बीज रूप आत्माओं की।
नहीं, वो
और 4.5 लाख उनमें प्रवेश होने वाले बच्चों की, बच्चा बुद्धियों की, 9 लाख की प्रजा होनी चाहिए एक तरफ और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए तब मुकाबला हो मैदान में। अभी 8 कैसे प्रत्यक्ष होकर के दुनिया के सामने लड़ाई लड़ेंगे?
And then they'll be able to fight with the entire world. 450,000 souls in living body, and by 450,000 souls entering in there, and then slowly 900,000 souls will be able to fight against the 5 to 7 billion souls. And it is means Baba's question. Then how can the 8 they can fight the entire world?
खाली फिल्म में एक जिज्ञासु ने पूछा है जो मुसलमान को मुसलमान के लिए देते
हैं।
एक जिज्ञासु ने पूछा है खाली फिल्म में मुसलमानों को तो मुसलमान ही देते हैं,
मुसलमानों
में तो मुसलमान ही देते हैं ना बस से बच्चों को।
आपकी बंगाली भाषा समझ में नहीं आ रही?
बंगाली नहीं हो रही।
क्या है?
मुसलमान लोग जो मुसलमान बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे को,
मुसलमान लोग ही मुसलमान ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं।
मुसलमान बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को।
हाँ अबोध हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो प्रश्न नहीं कर सकते। छोटे छोटे अबोध बच्चों की बुद्धि नहीं होती है इतनी, इसलिए जो बुद्धिहीन हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। द्वापर युग के शुरुआत में इस्लाम धर्म की आत्माएं जो ऊपर से आती हैं, वो भारतवर्ष के कमजोर देवताओं को कन्वर्ट करते हैं या पावरफुल देवताओं को कन्वर्ट करते हैं?
ये प्रश्न नहीं बाबा, परमेंद्र काट देते हैं ना, ये क्यों?
इसीलिए कर्मेंद्र काट देते हैं कि उसका जो ऊपरी छिलका है वो उतना आनंद नहीं देता है, अंदर का जो उसमें लिंग का जो अंदर का हिस्सा है वो ऐसा सेंसिटिव होता है कि वो ज्यादा आनंद देता है।
बेहद में क्या होता है?
बेहद में क्या होता है? बेहद में तो ये काम ही बंद कर दिया गया। बेहद में अभी भी तो इस्लाम धर्म के ही चल रहे हैं, न कि अभी देवता धर्म के कोई बन गए हैं। बेहद में उनकी इंद्रियां काटी जाती है धर्मराज के द्वारा। धर्मराज इस्लाम धर्म का है या देवता धर्म का है? दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है या क्लीन शेव दिखाया जाता है? तो इस्लाम धर्म का है ना, वो क्या करेगा? जिन दुर्योधन दुशासनों ने, जिन पुरुषों ने जबरदस्ती की है कन्या माताओं के साथ, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किए हैं, तो उनकी इंद्रियां काटेगा कि नहीं काटेगा? मुरली में क्या बोला? मुरली में तो यही बोला, जिन इंद्रियों से पाप कर्म किया है वो इंद्रियां काटी जाएंगी। तो शूटिंग नहीं होती यहाँ होती?
In unlimited world, how does the shooting takes place? So Baba is saying that in the unlimited world, the work of Islam is going on, just like the Islam Dharmraj. Dharmraj must be aware of him. Dharmraj is the one who is shown with mustache, and so therefore he is the one who belongs to Islam religion. So his work is going on, and he touches the organs of those people who perform the sins through that respective organs. So. The same thing is said in the holies as well, that to whichever organs will commit the sins, those organs will be cut. So Baba is saying that those people who they torture the wives, they torture the mothers and the virgins, so their organs are cut. So the work of Dhanaraj is going on in the Brahmin world.
बाबा कोई कन्या का 18 साल हो गया बाबा के पास आने के लिए तो तड़प रहे हमेशा ही लेकिन उनका परिवार पूरा ही विरोधी है तो उनको लाने के लिए क्या करना है परिवार का माँ बाप तो पूरा परिवार ही विरोधी है लेकिन वो आने के लिए तड़पते हैं हमेशा तो उनके लिए
तो अपनी नागरिकता को चेंज कराए बांग्लादेश की नागरिकता को त्याग पत्र दे और इंडिया में आकर के यहाँ की जो कौन सुषमा स्वराज उनसे मिले और यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ले
तो वहाँ क्या करना है बांग्लादेश में क्या करना है
बांग्लादेश में त्याग पत्र देकर क्या है हम यहाँ की नागरिकता को त्याग पत्र देते हैं
नहीं वो हम लाएंगे तो उनके माता पिता तो वो पुलिस लगा देंगे तो
क्या करने हैं
पुलिस को लगा देंगे केस कर
क्या?
देंगे
क्या कर केस कर देंगे
कन्या को जो माता पिता है ना
हाँ
हम साथ में लाएंगे तो हमारी
कन्या को कौन साथ में लाएंगे वो अकेली आ सकती है ना बालिग है तो बालिग है तो अपना वीसा अलग से बनवाए अपना पासपोर्ट अलग से बनवाए आपके ऊपर क्यों आधारित है
ऐसे तो सौ संत नहीं सौ संत नहीं है,
हाँ? नहीं है। तो हिम्मत है बच्चे तो मत दे दे बाप
तो यार वैसी है बाबा आने के लिए पासपोर्ट भी तो सब कुछ रेडी है लेकिन डर से नहीं आ पाए माँ बाप सब कुछ रेडी है
हाँ
पासपोर्ट वीजा सब कुछ रेडी है
हाँ
लेके आने के लिए
हाँ हाँ तो हिम्मत करेगी तभी तो आएगी
मास्टर आप सम पर्सनल क्वेश्चन सॉरी आई नो रिलेशन विद द नॉलेज सिर्फ पर्सनल
At the time of destruction, when the souls are gathered together at Mount Abu, And Baba mentions that there's so much pollution in the world from nuclear bombs and so on, radioactivity, and that the souls have to go into a deep stage of remembrance. So the breathing is reduced, so we're not breathing in the pollution. To what extent is the breathing reduced? And is there a point where the souls, when they become complete, the breathing ceases and the body is being sustained by the atmic energy itself for the 2,500 years.
Baba, वो बोल रहे हैं कि विनाश के समय जब सारी आत्माएं माउंट आबू में एकत्रित हो जाएंगी और ऐसे भी बाबा ने बताया है कि विनाश के समय जब बहुत ज्यादा एटमिक बॉम्ब वगैरह छूटेंगे तो उस समय ना बहुत ज्यादा ये वो होगा प्रदूषण फैलेगा और उस प्रदूषण वो प्रदूषण में मतलब काफी खतरनाक होगा सांस लेने योग्य नहीं होगा इसलिए जो आत्माएं जो माउंट आबू में इकट्ठी होंगी वो सारी मतलब उनकी श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो बहुत धीमी हो जाएगी और जिस कारण वो मतलब प्रदूषण अपने अंदर नहीं लेंगे तो वो बोल रहे हैं कि ये कब तक ऐसे उनका मतलब कैसे वो बहुत धीमी गति हो जाएगी तो ये कब तक रहेगी और क्या ऐसा भी समय आएगा कि वो सांस लेना फिर छोड़ देंगे और उनका जो शरीर है वो सिर्फ आत्मिक शक्ति के द्वारा ही चलेगा पूरे 2,500 सालों तक
2,500 साल तक आत्मिक शक्ति से ही चलेगा पांच तत्वों का जरूरत ही नहीं रहेगी
Baba is saying that is it that in the 2,500 years till 2,500 years the body the five elements of the body are not required and it's only that is the power of the soul that will work is it that
yes that's what I'm wondering about
बोले हाँ मुझे ऐसे मैं ऐसे ही विचार कर रहा हूँ मतलब मुझे ऐसे ही लगता है शायद ऐसा होगा
देवताएं जीव आत्मा हैं या सिर्फ आत्मा है
Baba is saying that deities are only soul or they are the body including soul. That means the body plus soul.
Jeevit Atma.
They are the living soul. Are they the living soul? They are? Yes,
that
question.
It's a living soul.
Jeevatma.
Combination.
तो इस दुनिया में तो जीवन तभी हो सकता है जब पांच तत्वों का शरीर रहे पांच तत्वों का शरीर ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा
In this world, life is possible only when the body of five elements is sustained, is there in this world. Only then. Otherwise, if the five elements of body, or sorry, the body of with five elements is not there, then the life is not possible in this world.
so at Mount Abu, the breathing is just reduced to a very fine, subtle level.
तो बोल रहे हैं कि फिर माउंट आबू में जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो बहुत मैंने बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत सूक्ष्म हो जाएगी.
याद में जो रहेंगे उनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया धीमी होगी. याद में रहने वाले रुद्रमाला के मण के होंगे या उसमें प्रवेश करने वाली आत्माएं भी होंगी.
So I was questioning that is it only the souls of Rudramala or the rosary of Rudra, they will be the ones who will stay in remembrance, or the souls who will enter in them will also be the ones who will stay in remembrance?
So, I say the Rudramala souls have more power of remembrance.
Rudramala mein bhi purusharthi number one hai, koi prajavarg ke purusharthi unhone practical mein hai. इस बात को माना ही नहीं कि प्योरिटी के आधार पर कोई नई सृष्टि पैदा होगी. वो प्योरिटी का पुरुषार्थ ही नहीं करते. जो प्योरिटी का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, राजयोग ही नहीं सीखेंगे, तो उनमें वो पावर आएगी श्वास प्रश्वास की धीमी गति का.
Saying that even among the rosary of Rudramala, the beads, there are the beads who are, means there are number one effort maker beads. So there are certain beads who make the effort for attaining the subject category. Means they are the ones who belong to subject category. So they don't accept that it is through purity that the creation, that the world is created. They don't accept this fact, and therefore they don't make effort for purity. So Baba is saying that so will they have the power of remembrance in them?
No.
नहीं होगी
उन्हें. तो कितने बचेंगे?
So how many will remain?
जो राजयोग सीखने वाले होंगे.
The ones who will be learning राजयोग, how many people will be there? 108.
108? क्यों? जो राज घराने में आने वाले हैं वो नंबर वार राजा ही करने वाले नहीं होंगे.
राजयोग
बोल रहे
हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि बाबा ने तो ऐसे बताया ना कि 108 आत्माएं हैं जो सारी दुनिया पर राज्य करेंगी.
सारी दुनिया पर राज्य करेंगी, लेकिन राजा अकेला राज्य करता है कि उसके सहयोगी भी होते हैं.
They will control the entire world, but then is the king who rules the world alone, or do he have some other subjects or helpers, and all, not subjects but helpers who help him in controlling the entire world?
He'll have his helpers.
उनके helpers होते हैं, सहयोगी होते हैं.
और helpers के भी helpers होते हैं.
And the helpers will have helpers.
तो 16,000 हो जाएगी.
So total there'll be 16,000.
16,000 का राज परिवार है.
क्या वो जो 16,000 है सारी दुनिया में बिखरे हुए होंगे?
हाँ, बिखरेंगे. जिन्होंने जो दूसरे धर्म से ज्यादा कनेक्टेड होकर के रहे हैं जन्म जन्मांतर, वो जब ब्राह्मण आकर के बनते हैं तो दूसरे धर्मों का जो संकल्पों का खून पड़ा हुआ है उनमें, वो संकल्पों का खून उनका बाबा की वाणी से टकराता है, क्रॉस क्वेश्चन पैदा करते हैं, विरोधाभास के वाइब्रेशन पैदा करते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, बात बात में अपोजिशन पैदा करते हैं शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे टक्कर खाते 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 संघर्ष करते करते जब ज्यादा संकल्पों का खून बह जाता है, कमजोर हो जाते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं.
So we think that the souls who belong, who convert to other religions, who have stayed in touch with other religions, those souls when they come in the Brahmin clan, when they become Brahmin at that time, they have the opposite thoughts. They have the opposite thoughts in their mind. The thoughts blood in the form of thoughts. So but we're saying that they keep on opposing the father, and they constantly they oppose the father. And after struggling a lot with the father, he is fighting and all. After fighting a lot with the father, opposing him. then after that finally they accept the father, and after that they surrender. Then they cool down. After struggling a lot, when they cool down, they surrender finally and they accept the father.
Baba, do you know when this confluence stage finally will be end?
Baba, वो बोल रहे हैं कि आपको पता है क्या कि जो संगम युग है वो पूरा अंत तक अब खत्म हो जाएगा.
बाबा ने जो बोला है वही तो हमको पता है. बाबा ने संगम युग ज्यादा से ज्यादा 100 साल का बोला है, तो 100 साल का होगा. उनका संशय क्यों आना?
सारी थक गए
हैं.
सारी थक गए हैं.
कमजोर आत्माएं थक गई हैं या पावरफुल आत्माएं थक गई हैं?
सो बाबा इज क्वेश्चनिंग दैट द वीक सोल्स आर टायर्ड और द पावरफुल सोल्स आर टायर्ड. वी गो होम बाबा. बाबा इज क्वेश्चनिंग व्हाट इज
अकबर से, अकबर की 2 लाख की सेना से महाराणा प्रताप के 60,000 सैनिक जब युद्ध करते हैं तो सारे ही एक साथ थक जाते हैं, भाग जाते हैं, या अकबर के 2 लाख भाग जाते हैं?
वो बोल रहे मैं नहीं जानती हूँ इसके बारे में, मैं नई हूँ इन सब.
बता रहे हैं ना कि महाराणा प्रताप जीत जाता है, उसकी प्रजा भी जीत जाती है, उसके जो सोल्जर्स हैं वो भी जीत के आते हैं, उनको भगा देते हैं.
बाबा इज टेलिंग दैट महाराणा प्रताप ही वन ही विन एंड ही वन द बैटल एंड ही द मिलिट्री आल्सो द वन द मिलिट्री ऑफ प्रताप एंड दे फाइनली दे शूड अवे ऑल द मिलिट्री ऑफ अकबर एंड दे फाइनली दे गॉट द विक्ट्री.
विदेशों में इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती.
So we're saying that in foreign countries, in abroad lands, Indian history isn't taught to the children. In foreign land, abroad land, the Indian history isn't taught.
We are learning.
अभी हम सीख रहे हैं.
बाबा गीता में आए मैं जो बॉल में रूप में कि आदित्य लक्ष्मीनारायण का समृद्ध स्वरूप विष्णु हो और ज्योतिमान पदार्थों में संकृत हुए किरण वाला सूर्य हो, मरुतों में मरुची हो और नक्षत्र में चंद्रमा हो. बाबा नक्षत्र में चंद्रमा है कितना
है?
नक्षत्र में चंद्रमा हो इसके कितना अर्थ है बाबा?
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके आधार पर सारी मानवीय सृष्टि टिकी हुई है? मानवीय सृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है? हैं? मानवीय सृष्टि जहाँ पनपे, जीवित रह सके, जीवन धारण कर सके, जीवन धारण करने के लिए सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? 9 ग्रह हैं.
सूर्य
वो ग्रह नहीं है, नक्षत्र है,
पृथ्वी।
और पृथ्वी का वो पावरफुल उपग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का पावरफुल उपग्रह कौन सा है?
कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो बढ़िया है, अच्छा है औरों के मुकाबले। अच्छा होने की वजह से ही, सहन शक्ति धारण करने की वजह से ही, शीतलता धारण करने की वजह से ही भगवान उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि वो मन मना भाव को अपनाता है। मेरे मन में समा जा, मेरा मन क्या कहता है कि सब देवता बन जाए। देवताओं का मुख्य गुण क्या है? सहनशीलता। सहनशीलता धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे।
चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते
हैं?
चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते हैं?
नक्षत्र में चंद्रमा, नक्षत्र में चंद्रमा
वो भी रोशनी देता है ना,
जो उपग्रह है। नक्षत्र
उपग्रह भी है क्योंकि पृथ्वी से निकला है, इसलिए उपग्रह। और सूर्य के बाद अगर पृथ्वी को सबसे ज्यादा रोशनी देता है तो कौन सा ग्रह है जो ज्यादा रोशनी देता है? उनको नक्षत्र कहा जाता है, जो स्वयं रोशनी देने वाले हैं वो सब नक्षत्र हैं। हाँ जी, इसलिए नक्षत्र नाम बोला है।
बाबा, शंकर माने मिक्स पार्ट है ना?
हाँ।
और तो कोर्स ने बताया, और जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो तो बताया शंकर माने मिक्स पार्ट है। तो आप कौन सा शंकर का बताइए? आप पहले बताइए, वो जो डिक्शनरी है
किसी ने कोई इनकी बात समझा? ये क्या कहना चाहते हैं?
शंकर माने मिक्स पार्ट है ना?
हाँ, मिक्स पार्ट है।
तो एक शंकर है, शंकर जाति
है,
शंकर धातु है ना?
धातु,
शंकर धातु,
धातु
शंकर धातु, शंकर
शंकर धातु होती कोई?
इसका इसका और तो
शंकर माने मिक्स,
फॉरेन धातु का मिश्रण।
हाँ, मिश्रण माने शंकर,
मिश्रण माने शंकर।
हाँ, मिश्रण माने शंकर, शंकरण, वर्ण शंकर, वर्ण माने जातियों का संकरण हो गया।
बाबा तो ठीक है, लेकिन वो ये बानन है ना?
हाँ,
बानन लैंग्वेज,
बानन लैंग्वेज
कोई भाषा है बानन?
हाँ,
बानन तो अलग अलग है, जैसे शंकर दक्ष है और एक है तालिबस्तर है।
अरे ऐसी बात बताओ जो सबकी समझ में आए। कहाँ से पढ़ करके आए हो?
बाबा
सा का अर
शंकर
है, सा का
शंकर, और शंकर में क्या डिफरेंस है?
एक ही बात है,
एक ही बात है,
एक ही बात है। हैं? ये बोलने वालों की कमी है, जो बोलने वाले हैं वो नहीं जानते सा का क्या मतलब होता है और सा का क्या मतलब होता है। सा अर्थ शिव से लगता है, का अर्थ कृष्ण अर्थात ब्रह्मा से लगता है, रा का अर्थ राम से लगता है। ये तीनों आत्माएं अलग अलग हैं। इन तीनों आत्माओं का एक पर्सनालिटी में संकरण, इसलिए शंकर है।
In the earlier question, I was asking something from Gita. So the reply, I'm not very clear with the question, but I'll just translate the reply what Baba gave. Baba said that among the nine planets, which is the biggest planet, which sustains the entire life. and life isn't possible on any other planet, but this is the planet in which life is possible. And Baba said that the earth on which life is possible. And Baba questioned that this is the powerful satellite of the powerful satellite of earth is moon. So moon is the, actually moon, or you may call it Brahma, he is the one who inculcates tolerance. So therefore father also bears moon on his head. Shankara shown with the moon on his head. So therefore since he inculcates tolerance, so father bears moon. And then Baba said that he is the one who accepts man manabhav, that means merge in my mind. So Baba is saying that he wished that all people they become like my mind. And Baba says that what is the mind of the deities? What is there in the mind of deities? Deities, they have a lot of tolerance in them. So he also wished that all they may also inculcate tolerance in them. So therefore he is a satellite because he emerged from earth. So he is the one who gives the life after sun. He is the one who gives life to earth after sun. So Baba says that all the satellites are the ones who give life. So then the next question, he was asking something about Shankar, and in that Baba said that Shankar is a combination of three souls, that means Shiva means Shiv, Kar means Krishna, and Ra means Ram. So all combined and they form Shankar.
Time jada ho gaya. Koi ko khas personal apni baat kehni ho, to do do minute mein apni baat bolo.
So we're saying time has exceeded, and if somebody wants to have some personal talk with Baba, then in 2 minutes, if possible, they can talk with Baba, each 2 minutes.